सबको नमस्ते। लास्ट टाइम हमने पतंजलि योग में यम और नियम की चर्चाएं की। नियम के पांच नियमों में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में से शौच संतोष और तप की चर्चा की थी। आज स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय का सिंपल अर्थ तो है स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी, अपने आप पढ़ना या अपने आप को पढ़ना, सेल्फ स्टडी और स्टडिंग सेल्फ। पर उसकी डेफिनेशन महर्षि व्यास देते हैं, स्वाध्यायो मुख्य शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपश्चर। उन शास्त्रों को, लिटरेचर को या टेक्स्ट को पढ़ना जो मोक्ष की ओर हमारी इंक्लिनेशन को बनाए, ऐसे चीजों को पढ़ना जिससे हमें अपने बारे में जानने के लिए हमें मोटिवेट करे, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना। जैसे कि मैं कौन हूं, संसार क्या है, परमात्मा कौन है, हमारा क्या संबंध है परमात्मा से, यूनिवर्स से मेरा क्या रिलेशनशिप है, इन सब चीजों से रिलेटेड जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वो हमें हेल्प करता है स्पिरिचुअल पाथ में जाने के लिए, और हमारे अंडरस्टैंडिंग में भी क्लैरिटी लाता है, हमारे विजडम को भी डेवलप करता है। तो इसलिए कहा ऐसे शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय है जिसमें मोक्ष की ओर जाने के लिए मोटिवेशन मिले, रास्ता मिले, लाइट का काम करे। और नंबर टू प्रणव जपश्चर। प्रणव जपश्चर ओमकार का जप करना। ओमकार क्या है? परमात्मा का नाम है। तो परमात्मा को भजना, भजना मतलब परमात्मा की भक्ति करना। स्वाध्याय के साथ साथ, स्वाध्याय तो थ्योरी हुआ, आप थ्योरिटिकली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं किस रूप में, डिवोशन के रूप में, उपासना के रूप में, तो वो प्रणव जप होता है। प्रणव मतलब ओमकार को प्रणव कहते हैं। वैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकर्षेण नूयते इति प्रणव, जिस शब्द के द्वारा, जिसके द्वारा परमात्मा की अच्छी तरह स्तुति की जा सके, परमात्मा को ठीक से बुलाया जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके, उसी को प्रणव कहते हैं और वो ओमकार को कहते हैं। और हम सब जानते हैं ओमकार परमात्मा का नाम है। तो ओमकार का जप करना, जप का अर्थ माला जपना नहीं, जपस तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसकी आप जप करते हैं उसके बारे में, उसके अर्थ, अगर कोई शब्द का जप करते हैं तो उसके अर्थों का आप माइंड बार बार रिपीटेडली माइंड में रिफ्लेक्ट करते हैं उसके मीनिंग को। अगर किसी व्यक्ति का जप करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में जब आप अपने माइंड में सोचते हैं, विचारते रहते हैं, कहते हैं ना आमतौर पर ये अपने बच्चे को जपता रहता है, मतलब आपका बच्चा दूर चला गया या आपका कोई प्रियजन जो दूर चला गया, आपके माइंड में हमेशा उसी की बात आती है। कोई भी बातचीत होती है तो आप उसी के बारे में ही बात करते हैं। वो जो कहते हैं ना, ये बच्चा पेपर में ऐसे देने के, ऐसे लिखने जाना था तो उसको टीचर ने कहा गाय की आत्मकथा रख लो, वही आया। गाय की आत्मकथा समझते हैं, बायोग्राफी ऑफ ए कार, है ना, तो उसे रट के चला गया। और क्वेश्चन आया बाढ़ के ऊपर, फ्लड के ऊपर, अब आप क्या करें? वो कोई भी क्वेश्चन आए उसको तो गाय की आत्मकथा ही लिखनी है ना। तो उसने लिखा कि बाढ़ आया, हमारे गांव में पानी आ गया और सब घर टूट गए, हमारे गाय थी वो भी बह गई। अब वो गाय, उसके दो सिंह है, उसके एक बछड़ा है, वो सफेद की है, फिर गाय की आत्मकथा पूरी उसमें आ गई। तो आपके ऐसे तो आपने गाय की आत्मकथा ही जानी है, इसी तरह कुछ लोग आप देखेंगे, मतलब वो कहीं भी बैठे, वो मंदिर में बैठे, घर में बैठे, पार्टी में बैठे, बैठते ही उनके मुंह से एक दो मिनट के बाद वही टॉपिक आएगा जिसकी वो जपते हैं। किसी के लिए हो सकता है वो टॉपिक शेयर मार्केट हो, वो मंदिर में भी बैठे हुए पीछे बैठ के बात कर रहे होंगे आज क्या है, कितना बढ़ा, कौन सा बढ़ा, कौन सा घटा। तो किसी के लिए ये भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में बाइडेन ने आज क्या कहा, ट्रंप कहां पहुंचा, और किसी के लिए टॉपिक होगा दिन रात 24 घंटा मोदी जी क्या हुआ। तो किसी के लिए अपना बच्चा है, मेरा बच्चा वहां पहुंचा, ये किया, आज उसने मुझे ना फोन करके ये बताया आज मैंने ना वो किया। तो उनके 24 घंटे के लाइफ में मोस्ट ऑफ टाइम जिसके बारे में आप सोचते हैं, आपका डिस्कस टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी वही होता है, आपके मन में भी वही चलता है। इवन आप टीवी में कोई प्रोग्राम देखते हैं, आप उससे उसी को कनेक्ट करते हैं, हर चीज में उसी को कनेक्ट करते हैं, यही है जप है। पर जब इसी तरह जब आप कोई शब्द पर जप करते हैं, जब उस शब्द का, मंत्र का भाव को, उसके मीनिंग को, वो आपके माइंड में बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, बार बार उसके मन में आपकी सोच में आ रहा है, वो जप बन जाता है। तो प्रणव जप मतलब जब आपके विचारों में, आपके माइंड में कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी काम हो, कैसा भी एक्सटर्नली आप करो, वही बात बार बार आता रहे। जैसे पॉलिटिक्स की बातें, पैसे की बातें, प्रोफेशन की बातें बहुत लोगों के लाइफ में हर जगह आ जाता है, यही जप है। और इसका आजकल का जो मॉडर्न फॉर्म हम देखते हैं जप का, ये माला लेकर के चलते हैं, वो भी कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, उनका ये चलता रहता है। पर डिस्कशन पूरा करते हैं वो, बाइडेन पर भी करते हैं, मोदी पर भी करते हैं, बच्चों पर भी करते हैं, शेयर पर भी करते हैं, पर ये चलता रहता है, हरे कृष्णा ये, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि आपके अंदर तो कोई रिफ्लेक्ट, आपके अंदर तो रिफ्लेक्ट कर रहा है बाइडेन साहब, आपके अंदर तो विचार आ रहा है मोदी जी का, अंदर तो विचार आ रहा है पैसे का, अंदर तो विचार आ रहा है बच्चों का, अंदर तो विचार आ जाए और किसी का, पर आपके मुंह में सिर्फ आ रहा है वो गायत्री मंत्र है, ओम जप है, हरे कृष्णा है, कुछ भी है। तो ये तो फिजिकल एक्टिविटी चलता रहता है, गले से ऊपर ऊपर नीचे को जाता नहीं, माइंड में तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जप का अर्थ होता है जिसके बारे में आपके मन में ख्याल बार बार आता रहता है, वही जप है। और वो किसके बारे में आना चाहिए, कहते हैं कि प्रणव जप। जब प्रणव तुम्हारे जप का सब्जेक्ट बन जाए, जब तुम्हारे मन में फिजिकली भी तुम्हारे मुंह से वो, आप लाउडली बोलो या चुपचाप बोलो या मेंटली बोलो, पर अगर वो तुम्हारे माइंड में रिफ्लेक्ट कर रहा है, बार बार रिपीटेडली आ रहा है और आने की आप कोशिश करते हैं, तो वो जप होता है। तो स्वाध्याय का अर्थ होता है ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जिससे मोक्ष के लिए हमें, मुख्य क्या है, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, उनको समझें और प्रणव जप परमात्मा का जप करें, इससे कहते हैं स्वाध्याय। पांचवा जो नियम का सचिव है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह न्योछावर कर देना, सौंप देना अपने आप को। तो उसके लिए महर्षि व्यास लिखते हैं, ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरु सर्वकर्मार्पण तत्फलन्यास तत्फल संन्यास होगा। दो तरीके से रास्ता है, जो आपके लिए सुइटेबल हो वो वाला रास्ता चूज कर लेना। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति अपने आप को सौंप देना। सौंपने के कैसे, ऐसा तो कोशिश करे भी होता नहीं है, मतलब हम कहीं आंख बंद करके भगवान को याद करने की भी कोशिश करें, भगवान कम आता है और सारी चीजें आ जाते हैं। तो रास्ता क्या है, तो व्यास प्रिस्क्राइब करते हैं दो तरीका है। पहले तरीका है उस परम गुरु, गुरुओं का गुरु जो परमात्मा है, उस परमात्मा में तुम जो कुछ कर्म करते हो, कोई भी काम करते हो, खाना पीना बैठना उठना बाहर जाना कोई भी काम करते हो वो सब उसी को सौंप दो, उसी को सौंप दो मतलब तुम अपने डुअरशिप से अपने आप को हटा दो, वो सब परमात्मा है, परमात्मा करता है कराता है, मैं सिर्फ निमित्त हूं, निमित्त समझते हैं मैं सब इंस्ट्रूमेंट हूं। आप अपने आप को सब्जेक्ट से हटा करके इंस्ट्रूमेंट बना दीजिए, जो लैंग्वेज की ग्रामर में पढ़ते हैं ना, जब आप सब जो संस्कृत ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में भी पढ़ते हैं, जब कोई आप सब्जेक्ट बनते हैं कर्ता बनते हैं तो प्रथमा विभक्ति होती है, जब इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो थर्ड केस बन जाता है। आप अपने आप को इंस्ट्रूमेंट बना दीजिए, तो कर तो आप रहे हो तो परमात्मा को कर्ता बनाएंगे, फिर आप कैसे कर रहे हो, वो तो वैसे ही है जैसे मशीन भी काम करता है, तो मशीन काम करता है पर कराने वाला कोई दूसरा होता है। यही फीलिंग ईश्वर की भक्ति में ले आइए, आप मशीन के जगह ले लीजिए, परमात्मा को कर्ता बना दीजिए, होगा क्या है, होगा ये होगा कि आपका ईगो कहीं नहीं रहेगा। हमारा ईगो का कारण क्या है, मैं वो हूं और मेरा ये है, मैं क्यों हूं, क्योंकि मैंने ये किया, ये कर रहा हूं, ये करूंगा, ये जो भाव है यही है ईगो है। और योग में ईगो एक ऑब्स्टिकल होता है, ईगो एक नहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है स्पिरिचुअल लाइफ में या योग साधना में वो होता है ईगो। तो उस ईगो को कंट्रोल करने का, मिनिमाइज करने का जो सबसे बढ़िया साधन है कि आप ईश्वर को, खुद को अगर आप सौंप नहीं सकते हो तो अपने कर्मों को, कर्मों के मतलब कर्मों की जो डुअरशिप है उसको सौंप दो। अगर वो भी तुम्हारे लिए मुश्किल है तो अगला जो दूसरा जो रिकमेंडेशन है तो फिर तत् कर्म फल संन्यास। चलो ठीक है, ये मुश्किल हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट में अपने आप को कैसे परमात्मा को सौंपे, तो दूसरा ऑप्शन है तो जो कुछ तुम कर्म कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट मिले उसको संन्यास कर दो। न्यास कर दो मतलब उसको आप सौंप दो कि मेरा नहीं है ये सब तुम्हारा, उसकी कृपा से मिली, मेरे परिश्रम से नहीं मिला। ऐसा हम कभी कभी करते भी हैं पर सिलेक्टिवली करते हैं, 100% जब करेंगे तब जाकर के वो भक्ति में कन्वर्ट होगा। 100% कैसे करेंगे, अच्छा फल मिले तो भी परमात्मा को क्रेडिट जाए, बुरा कर फल मिले तो भी परमात्मा को क्रेडिट जाए। हम कभी कभी जब अच्छा होता है तो फिर क्रेडिट तो हमारा है, और जब बुरा हो तो भाग्य खराब था, किस्मत खराब था, प्रभु की जैसी इच्छा थी। प्रभु की इच्छा को जब आप हर कर्म फल में जोड़ते हैं तब जाकर के वो भक्ति में कन्वर्ट होता है। इसमें एक और छोटी सी चीज है, कभी कभी हम ऐसा बोलने की आदत डाल देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा या हमने कहीं से सुना कि ये सब परमात्मा की इच्छा से है, ऐसा समझ के चलो। हम क्या मैसेज लेकर जाते हैं, मैसेज लेते हैं अपने लाइफ में, हम ऐसा समझना रियलाइज करना पर ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देते। इंपोर्टेंस किस पर देते हैं, बोलने पर। कोई पूछे जी जी प्रभु की कृपा से सब हो रहा है, क्या हो रहा है जी सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ये बोलना बहुत बड़ी चीजें नहीं होता है, हमारा बोलना और हमारे जो सोच ये मैच नहीं करता है मोस्ट ऑफ टाइम। अगर वो आप क्या बोलते हो वो पब्लिक के लिए मैटर करता है, आपके दोस्तों के लिए मैटर करता है, सोसाइटी के लिए मैटर करता है, क्योंकि इससे आपका परसेप्शन बनता है, आप किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, फिर आपको लोग पसंद करते हैं नापसंद करते हैं उससे डिसाइडेड होता है। पर आपके अंदर क्या चल रहा है स्पिरिचुअलिटी में वो मैटर करता है। आप ना बोलो कि प्रभु की कृपा से हो रहा है पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए दोस्तों को, बोलने क्या बोलते हो वो मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारे दिल में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब ये आसान नहीं है, आसान होता तो फिर प्रैक्टिस में क्यों लिखा। इसी को जब आप प्रैक्टिस करते हो, जो कुछ भी कर रहा हूं हो रहा है प्रभु की कृपा से, अगर ऐसा सचमुच मेरे रियलाइजेशन में आ जाए, अगर सचमुच ये मेरे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए, फिर वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तो 5 यम हुए, 5 नियम हुए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह 5 यम और शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो योग प्रैक्टिस के लिए पतंजलि रेकमेंड करते हैं ये 10 चीजें तुम्हारे एलिमेंट्री क्लास प्रैक्टिस होगा, इसको किए बिना आगे कोशिश मत करना। साइमल्टेनियसली चल सकते हो, जो अष्टांग योग में बाकी जो 6 रह गए इनके साथ साथ कर सकते हो, या इनको करने के बाद कर सकते हो, पर इनको छोड़ के मत करना। छोड़ के करने से क्या होगा, बाकी 6 कौन है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसका तुम्हें फिजिकल बेनिफिट तो ठीक है, आसन प्राणायाम तो एक अलग चीज है, उसका हेल्थ से भी रिलेटेड है, पर उससे आगे जब आप जाते हैं धारणा ध्यान समाधि मेडिटेशन वगैरह में, तो थोड़ा बहुत टेम्पररीली कुछ मेडिकल बेनिफिट तो आपको मिल जाए, पर स्पिरिचुअल बेनिफिट 0 नहीं, माइनस होता है। माइनस क्यों होता है, आपके अंदर हिपोक्रेसी पैदा करता है, हिपोक्रेसी और एक फॉल्स परसेप्शन पैदा करता है कि क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूं तो मैं स्पिरिचुअल हो गया, और ये बहुत डेंजरियस परसेप्शन है। आपका यम ठीक नहीं, मतलब तुम्हारे कैरेक्टर ठीक नहीं, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं, तुमने अहिंसा पर कंट्रोल नहीं किया, तुमने अस्तेय पर कंट्रोल नहीं किया, तुमने ब्रह्मचर्य पर कंट्रोल नहीं किया, परिग्रह को ठीक नहीं किया, सत्य पर कंट्रोल नहीं किया, बस मेडिटेशन कर, मतलब विदाउट टेकिंग केयर ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड, योर कैरेक्टर, योर कंडक्ट, जब आप सिर्फ धारणा ध्यान समाधि में जाते हो तो उसका कुछ मेडिकल बेनिफिट तो मिल सकता है उसके अलावा, पर उसका जो दूसरा साइड इफेक्ट होता है, अगर आप कोई उस दृष्टि से करे कि नहीं मुझे हेल्थ ठीक करने के लिए करना है, उसका कन्विक्शन क्लियर है, दैट्स फाइन, पर अगर कोई लगे क्योंकि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूं और इसीलिए मैं स्पिरिचुअल बनता जा रहा हूं, या मैं स्पिरिचुअल रास्ते में मेरी प्रोग्रेस हो रहा है, वो उसके लिए इसलिए खतरनाक है, वो एक भ्रम में भटकता है। और जब तक तुम्हारे चरित्र में सुधार ना हो, तुम कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पतंजलि अष्टांग योग में यम और नियम को पहले रिकमेंड कर, खाली रिकमेंड नहीं करते, आगे भी कहते हैं ये जो यम और नियम जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। तुम नहीं करते हो, नहीं करते हो, लोग तो दुनिया में तो पापी भी हैं, माफिया हैं, चोर हैं, चक्के हैं, वो तो अलग बात, पर तुम्हें अगर योग मार्ग में जाना है तो ये जो 5 यम और 5 नियम ये तुम्हारे लिए महाव्रत हैं। दीज आर द ग्रेटेस्ट वाउज, दे शुड बी द ग्रेटेस्ट वाउज इन योर लाइफ, और वो यूनिवर्सियल होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन बाय यूनिवर्सियल, मतलब ये आप कोई भी एक्सक्यूज दे करके इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। वो एक्सक्यूज कोई जाति, जी में ये तो जानवर है, इनको जीने का थोड़ी हक है, इनको अगर मार दो तो क्या फर्क पड़ता है, मनुष्य को ना मारो तो ठीक है पाप लगे, मारो तो पाप लगता है, यही तो ओवरऑल का परसेप्शन तो यही है ना, इवन वेस्टर्न सोसाइटी में यही है, ह्यूमन बींग की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, आप उसको मार दो, उसके साथ खराब व्यवहार करो, जी ये तो बड़ा क्रूएल है, ये बहुत वायलेंट है। और जब आप क्रूएलिटी की बात करते हो कब कर रहे हो, जब तुम्हारे टेबल ऊपर, टेबल के ऊपर चिकन रखा हो, पोर्क रखा हो, बीफ रखा हो। तो पतंजलि कहते ये नहीं चलेगा, जाति का एक्सक्यूज नहीं, जाति मतलब जन्म, कौन से शरीर में पैदा हुआ। नंबर 2 देश, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर प्लेस में ये नहीं किया जा सकता, ये पर्टिकुलर प्लेस में करना ठीक है, देखो वो जंगल में तो ठीक है पर शहर में ठीक नहीं है, ये गांव में तो ठीक है पर शहर में ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा। और काल ये नहीं कह सकते कि देखो अभी जवान है बेटा, अभी जवान है कुछ करने दो, वो बुढ़ापा में ठीक है पर जवानी में थोड़े ही ठीक है, ये तो बच्चा है। ये वो हमारे यहाँ है, वो हमारे हिंदुओं में सुव्रत रखते हैं ना, क्या जी आज शुक्रवार है मैं वो नहीं खाता हूं, मांस नहीं खाता, शुक्र आज वो संतोषी मां व्रत है ना तो आज नहीं खा, बाकी 5 दिन खा सकते। मतलब शुक्रवार के अगर नहीं खाओगे तो सारा पुण्य मिल जाएगा, 6 दिन का जो खाया उसका कुछ गड़बड़ नहीं। अच्छा ठीक है जी, मैं शिव भक्त हूं, मंडे के दिन नहीं खाता हूं, नहीं खाता हूं मतलब जीव हत्या नहीं करता, मैं बिना जीव हत्या के कैसे खाऊं, तो सोमवार को नहीं खाते हो मतलब बाकी 6 दिन खा लूंगा। तो पता चले कहते ये टाइम बाउंड तुम नहीं कर सकते हो, और समय समय मतलब कोई कंडीशन या कोई ऑकेजन या कोई सिचुएशन जी, अमुक सिचुएशन में करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, अमुक सिचुएशन में मुझे ये कंप्रोमाइज करना पड़ा, नॉर्मल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं। पतंजलि का फोकस तो योग पर है, तुम अगर योग रास्ते पर, योग के रास्ते पर हो, तुम अगर स्पिरिचुअल को फॉलो करना चाहते हो, फिर तुम्हारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढना, कोई रिजर्वेशंस नहीं हो सकता, ये 10 के 10 तुम्हें एवरी डे एवरी मोमेंट एवरी आवर एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट तुम्हारे लाइफ में होना चाहिए। स्वामी दयानंद जी इसको अपने ढंग से कहते हैं, नियमों को, खाली नियमों को भी प्रैक्टिस करो यम के बिना तो भी ये गलत होता है। नियम में क्या है, आसान है ना, क्या शौच सफाई रखना, वो सफाई अलग बात है, दो तरह की है, अंदर की भी सफाई बाहर की भी सफाई। अंदर का मतलब अंदर का मतलब मन की शुद्धता हो, और शरीर मतलब कपड़े वगैरह की सफाई। अब वो तो आसान है, शरीर को साफ रखना, कपड़े साफ रखना, घर वगैरह साफ रखना, बंद कर वो। बंद नहीं हुआ शायद, अब दोबारा चला दो, ये बड़ा पुश करते। तो ये तो आसान है, पर मन की सफाई मुश्किल है, पर सोचा हम, क्योंकि जो चीज एक्सटर्नल होता है ना वो करना आसान होता है, क्योंकि उसकी आसान इसीलिए उसके कुछ इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, वो क्या है, पब्लिक अप्रिशिएशन सबसे बड़ी चीज होती है। हिपोक्रेसी कैसे फैलती है, पब्लिक अप्रिशिएशन या किसी के अप्रिशिएशन का जो एक होता है ना, ये पतंजलि और योग मार्ग में इसको बड़ा डेंजरस माना गया। पतंजलि अपने विभूति पाद में लिखते हैं कि ये जो लोक प्रशंसा लोक तारीफ करना, इससे योगियों को बचना चाहिए, स्टेज पर नहीं जाना चाहिए, अपनी जो भी जो उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया है पब्लिक में शो नहीं करना चाहिए। बोले क्यों, बोले पब्लिक तारीफ करेगी, तारीफ को जहर समझना, क्यों, उसे आपका ईगो को सेटिस्फाई करता है, जैसे जैसे ईगो सेटिस्फाई होगा तो तुम जिस रास्ते में चल रहे थे फिर दूसरे रास्ते में चलने लगोगे, जो तुमने अचीव किया था उसको वो कैश करने लगोगे, कैश किससे, अप्रिसिएशन हो, फॉलोअर बने, लोग तुम्हें बड़े ऊंचा माने, ये नहीं होना चाहिए। शौच संतोष कंटेनमेंट है, तपह ऊपरी तौर पर कुछ प्रैक्टिस करना, तपस्या करना, शौच संतोष तपस्वाध्याय बुक्स पढ़ना, भक्ति करना। आजकल देखिए करोड़ इस आज के डेट में किसी भी रिलीजन में जो जो प्रचार होता है वो भक्ति पर होता है, क्योंकि भक्ति कि दो स्वरूप है, आप मेंटली अपने आप को सरेंडर करते हैं वो मुश्किल है, बाहर वाला आसान है। चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, मंत्र पढ़ो, जप करो, कुछ और जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज करो, इससे लगता है कि बड़ा धार्मिक है, आपको भी हमें भी ये अच्छा फीलिंग होता है कि भाई हम भक्त बन गए, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल है। तो स्वामी जी इसीलिए वार्निंग कर देते हैं, तुम अगर नियम का केवल प्रैक्टिस करोगे इन पांचों को, वो धीरे 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 एक्सटर्नल बन जाएगा, और एक्सटर्नल प्रैक्टिस से तुम्हें सोशियल अप्रिशिएशन, सोशियल मतलब आपके घर के भी अप्रिशिएशन हो सकता है, दोस्त भी अप्रिशिएट करेंगे, और उससे तुम अपने आप को गलत फहमी में रखोगे कि मैं तो बड़ा धार्मिक बन गया, स्पिरिचुअल बन गया, और ये तुम्हारे लिए कोई भला नहीं है जब तक तुम यम को साथ में नहीं लोगे। यम क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, ऑनेस्टी, ब्रह्मचर्य, कंट्रोलिंग आवर सेक्सुअल डिजायर्स, और अपरिग्रह, बहुत ज्यादा घर में अपने पास पुजेश करना चीजों को। ये पांच चीजें पब्लिक नहीं देखती है, दुनिया नहीं देखती है, इसलिए करना मुश्किल है। जो चीजें हम चार दीवारी के बाहर करें नहीं कर सकते, उनको करना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं, तो इसीलिए वो मुश्किल होता है। पर अगर तुम इनको छोड़ के केवल नियम करोगे तो वो किसी काम के नहीं होंगे। तो कंक्लूजन क्या है? यम और नियम योग मार्ग में, स्पिरिचुअल मार्ग में फाउंडेशन है, और ये जो 10 फाउंडेशन के रूप में यम नियम बताया, ये सिर्फ पतंजलि बताते हैं, ऐसा नहीं है। आप वैदिक लिटरेचर में कोई भी शास्त्र उठाओ, आप वेदांत दर्शन पढ़ो, उसमें भी वो जो षट संपत्ति रेकमेंड करते हैं वो भी यही है। आप मनुस्मृति पढ़ो, धर्म का लक्षण क्या है, वो भी घुमा फिरा के यही है। पाप पुण्य के डेफिनेशन में भी यही 10 चीजें घुमा फिरा के आते हैं। मतलब जीवन में अगर तुम्हें धर्म की प्रैक्टिस करनी है, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करनी है, तो ये 10 चीजें फाउंडेशन है। इसके बिना आगे स्पिरिचुअल पाथ मुश्किल होता है। और यम नियम प्रैक्टिस के साथ जो तीसरा कंपोनेंट है अष्टांग योग का, वो है आसन। आसन पतंजलि लिखते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन का मतलब होता है पोस्चर, बॉडी की जो पोस्चर होता है, जो पोज होते हैं, कैसा होना चाहिए, स्टेडी और कंफर्टेबल। अपने आप तो नहीं होगा आपका बॉडी स्टेडी और कंफर्टेबल, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो, उसमें स्ट्रेंथ हो, स्टेमिना हो, और आप किसी भी लेवल पर आप कंफर्टेबल फील करें, बैठे उठे चले सोए कंफर्टेबल फील करें, यह आसानी से तो नहीं होता है। इसको अचीव करना पड़ता है। उसको अचीव करने के लिए जो कुछ करते हैं उसको हम कहते हैं आसन। ये जो आजकल के जो हम योग के नाम पर जो करते हैं वो आसन है, पद्मासन, वो मर्कटासन, मकरासन, जो भी हम करते हैं, इससे होता क्या है, आपकी बॉडी और बॉडी के पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आता है, स्टेमिना आता है, और आप किसी भी पोज में आप बैठो, खड़े हो, सो, लेटो, आप कंफर्ट फील कर सकते हो। बहुत सारे लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, बहुत सारे लोग चेयर पर नहीं बैठ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो पैर से लेकर के सर तक 50 तरह के हमारे बॉडी में प्रॉब्लम। तो इनडायरेक्ट वे में कहें तो आजकल जिसको हम कहते हैं जो हेल्दी बॉडी चाहिए तो आसन करना जरूरी है। तो उसकी डेफिनेशन क्या दिया, स्थिर सुख, आपकी बॉडी और बॉडी के पार्ट्स स्थिर हो, शांत हो, स्टेशनरी हो, स्टेडी हो, और सुखदायक हो, कंफर्टेबल हो, उसके लिए जो कुछ आप करते हो आसन है। पतंजलि के योग में, राजयोग में आसनों की बहुत तरह के डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि पतंजलि स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस के लिए योग रेकमेंड करते हैं, इसलिए इनके योग में बेसिकली 4-5-8 तरह की जो आसन है, पद्मासन है, वज्रासन है, सुखासन है, यही सब रेकमेंड करते हैं। पर हठ योग जो हमने योग श्रृंखला में सबसे पहले जो चर्चा की थी, योग सीरीज में जो पहला हठ योग, उसमें जितने तरह के आजकल आप योग करते हैं वो सब हठ योग का पार्ट है। तो पतंजलि रेकमेंड करते हैं हठ योग जो आसन, हठ योग का जो आसन प्रक्रिया है वो तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग, हेल्दी, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए करते रहना चाहिए। आप कहेंगे स्पिरिचुअलिटी में इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है ना, अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप कैसे 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा बैठोगे? आपकी कमर में दर्द है, अब मेरा है अभी 4-5-7-8 दिन से लेटे रहना पड़ता है, तो अगर योग करता आसन तो नहीं होता है ना। तो किसी को कंधे में दर्द है, किसी को कहीं दर्द है, आप कैसे मेडिटेशन कैसे करोगे, जब कैसे करोगे, तब कैसे करोगे, क्या कैसे करोगे? अगर आपकी बॉडी में, आपको सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, पेट में दर्द है, कैसे करोगे? तो आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए पहले हेल्दी तो बनना पड़ेगा ना। वो एक बहुत बड़े कवि हुए, महाकवि कालिदास, नाम सुना होगा। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कुमार संभव में कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि धर्म को प्रैक्टिस करना बाद में, पहले शरीर का ध्यान रखो। शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तभी तुम धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शरीर को ठीक रखने के लिए आसन की जरूरत है। आसन के बाद अगला जो कंपोनेंट पतंजलि प्रेस्क्राइब करते हैं वो है प्राणायाम। प्राणायाम, वैसे प्राणायाम का सिंपल मीनिंग होता है प्राण का आयाम। आयाम का मतलब होता है विस्तार, एक्सपेंशन। हमारे जो वाइटल लेयर से जो सांस हम अंदर लेते हैं या छोड़ते हैं, उसको कितने लंबा हम एक्सपेंड कर सके। आप सांस अंदर लें, कितने देर तक आप रोक पाते हैं? शुरू में प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आप 10 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए होगा, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप 1 मिनट तक, 2 मिनट तक रोक सकते हैं। पर अगर आपकी प्रैक्टिस में आप परफेक्टली प्रैक्टिस करते हैं, और वो जो प्रैक्टिस करने की 4 कंडीशन पतंजलि ने बताया है ना, कि आप कंटिन्यूअसली करते हैं, विदाउट एनी इंटरप्शन करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, विद डिवोशन करते हैं, तो कोई भी चीज आप जल्दी अचीव करेंगे। आप चाहो तो अपनी सांस को 24 घंटे हफ्तों तक रोक सकते हैं, हफ्तों तक। वो सांस अंदर रोकें या बाहर रोकें, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ योर ब्रीदिंग एयर। आपकी ब्रीदिंग, सांस को कितने देर तक आप, कितना आप एक्सपेंड करते हैं, टाइम और प्लेस दोनों तरीके से। टाइम वाइज मतलब कितने देर तक आप इसको रोक सकते हैं, और कितने प्लेस वाइज मतलब कितना लंबा। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी सांसें, जब हम सांस छोड़ते हैं बहुत कम तक आता है, क्योंकि अंदर स्टेमिना नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हेल्दी है, स्टेमिना अच्छी हो, प्राणायाम आप रेगुलर करते हैं, आप सांस यहां से लें तो सांस यहां भी आप फील कर सकते हैं, आपके हवा को फील कर सकते हैं। अगर आप चाइनीज मार्शल आर्ट की मूवी वगैरह देखते होंगे, मूवी इसीलिए कि आप रियल आर्ट तो कहां देख पाएंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे वो सांसों से एक हल्की सी कागज के टुकड़े के भी फूंक देते हैं सांस से, तो वो इतने स्पीड से जाता है कि आपको वो चोट भी कर सकता है। ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। बस एक आपको उतना एक्सपैंड, टाइम और प्लेस के वाइज सांसों को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना है कि वो इस तरह के एक्टिविटीज कर सकते हैं। कैसे होगा प्राणायाम? तस्मिन सति, जब आपके बैठने का मतलब आपके बॉडी अगर जब परफेक्ट हो जाए, हेल्दी हो जाए, स्टैमिना बन जाए, स्ट्रांग बन जाए, फ्लेक्सिबल बन जाए, तब प्राणायाम जब आप करते हैं, प्राणायाम में क्या होता है, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद, जो सांस आप अंदर लेते हैं या जो श्वास आप बाहर छोड़ते हैं, श्वास समझते हैं ना, जो ब्रेथ है, छोड़ना और लेना, इसकी गति को, इसकी मूवमेंट को आप एक्सेल कर देते हैं, हार्ट काट देते हैं, रोक देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, मतलब गति मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, रेगुलरली चलता है। प्राणायाम में क्या करना होता है, उसकी वो जो रेगुलरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करना, सांस अंदर लिया बंद कर दिया, बाहर छोड़ा रोक दिया, अपने आप नहीं करता है, आप किसी गुरु से, किसी इंस्ट्रक्टर से प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के प्रैक्टिस करनी होती है। और प्राणायाम के सैकड़ों तरीके के प्राणायाम है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो हम बस उसकी जो बेसिक प्राणायाम क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राणायाम बेसिकली सांस लेना या छोड़ने को रोकने का, स्टॉप करने का, ब्रेक करने का, उसकी जो फ्लो है या सेपरेट करने का नाम प्राणायाम है। इसी को पतंजलि, ये तो सेकंड चैप्टर में आता है 2:39 में, फर्स्ट चैप्टर में लिखते हैं प्रच्छर्दना विदारणाभ्याम प्राणस्य, क्या भाव है, जब आपने प्राण को, जो सांस आप लेते हैं, इसको आप होल्ड करते हैं, जिसको हम कितने स्टॉप कर देना, मतलब सांस अंदर लिया तो होल्ड किया, बाहर छोड़ा तो होल्ड किया, वो जो सांस को रोकने की ड्यूरेशन कितना होगा, शुरू शुरू में कम होगा, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर करते हैं, विदाउट एनी इंटरप्शन करते हैं, आप घंटों तक भी सांस रोक सकते हैं, विधारण होल्ड करना और प्रच्छर्दन ब्रेक करना, ये सांसों की प्राणायाम की डेफिनेशन। और जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं कि सांस को अंदर रोकना बाहर रोकना बस इतने ही प्राणायाम है, प्राणायाम का रिजल्ट ये, कैसे रोके उसके लिए सैकड़ों मेथड है, और हर मेथड में अलग अलग तरीके से सांसों को हम चैनलाइज करते हैं या उसको होल्ड करते हैं, उसके कारण बहुत सारे तरह के प्राणायाम हो गए। और आजकल तो मेरे से ज्यादा बाकी लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि जो आप ये पूरे दुनिया में खास करके पढ़े लिखे लोगों में पॉपुलर हुआ है, बिकॉज ऑफ द हेल्थ पर्पस, हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट होता है, आपकी नर्व सिस्टम को ठीक करने के लिए, आपके माइंड को कूल काम और स्टेबल बनाने के लिए, मेंटल जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंगर हो, एक्सट्रीम इमोशंस हो, इनको भी कम करने के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कितना हेल्पफुल है, और ओवरऑल जो आपकी नर्व सिस्टम है वो फंक्शन ठीक से करे, आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे आपके हार्ट है, आपकी लीवर है, आपकी लंग्स हैं, ये ठीक ठीक काम करे, उसके लिए प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल है। तो इसका तो जो मेडिकल बेनिफिट है वो तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता है, पर योग में इसकी क्या जरूरत थी, और जो मेडिकल बेनिफिट वाला जितना वो आपको बेसिकली हठ योग के द्वारा पता लगता है, पर पतंजलि योग में पतंजलि इसको क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि सांस लेने प्राणायाम करने से जो फायदा होगा वो हम बाद में बताएंगे, स्पिरिचुअली क्या फायदा होगा, पहले देखते हैं वो प्राणायाम कितने तरह के बेसिकली होते हैं। बेसिकली 4 तरह के प्राणायाम होते हैं, और वो 4 तरह के प्राणायाम को हम अलग अलग तरीके से करके फिर 6 तरह के कर सकते हैं। पतंजलि के सूत्र देखते हैं, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, बेसिकली तीन तरह के सुर में, तीन तरह के प्राणायाम इस सूत्र में। बाह्य जो एक्सटर्नली जब आप अपने सांसों को रोकते हैं, अभ्यंतर इनर सांस को, ब्रेथ को, जब आप सांस को अंदर लिया, जब आप अंदर उसको सप्रेस करते हैं, और स्तंभ जो जहां है वहीं आप रोकते हैं। ये तीन तरह के है, और वो दीर्घ, अगर ये तीन तरह के प्राणायाम आप प्रैक्टिस करते हैं, अंदर रोकना, बाहर रखना, और जहां भी है वहीं रोक देना स्तंभ, मतलब आप जैसे बैठे सांस जिस भी मोड में हो, अंदर जा रहा हो, बाहर आ रहा हो, बीच में हो, तो वहीं आपने रोक दिया। ये डिफिकल्ट होता है। चौथा जो हम जानेंगे वो सबसे डिफिकल्ट होता है। ये इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, वो धीरे 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 आपकी सांसों को प्रोलंग्ड करेगा, लंबा करेगा और शटल करेगा। लंबा समझते हैं, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, आप 5 मिनट तक रोक सकते हैं, 8 मिनट तक, 10 मिनट तक, 24 घंटे तक, कितने भी रुक सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितना उसमें एफर्ट्स डालते हैं। चौथा जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो होता है बाह्याभ्यंतर। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। अब ये क्या है कि यू हैव टू गो अगेंस्ट द फ्लो। सांस अगर अंदर जा रहा हो उसको रोक देना तो हो गया अभ्यंतर वृत्ति, पर उसको अंदर ना जाने दे करके बाहर की ओर फेंकना, ये मुश्किल काम है। ये है चौथा। इसी तरह सांस अगर अंदर जा रहा हो, ये बाहर निकल रहा हो, एक्सेल कर रहे हो, नेचुरली यू आर एक्सेलिंग, आप इसको रोक करके इनहेल में कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्जेक्ट, और जब आप इस तरह कर रहे होते हैं तो आपकी फोकस जो होता है वो उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। इसको कंपाइल करके आसान बताएं, एक्सटर्नल बाह्य जिसको कहते हैं, जहां अपने सांस को बाहर रोकते हैं, इंटरनल जब आपको अंदर रोकते हैं, जितने देर तक रोक सकते हैं, इमीडिएट स्तंभ, इमीडिएट चेकिंग, जहां पर है वहीं रुकते हैं, और जिसको बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी बोला, उसके लिए अंग्रेजी में आउट इन थ्रोइंग ड्रॉइंग, उसमें आप फोर्सिबली, यहां फोर्स यूज करते हैं, सांस जहां भी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको भेजने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, आपका मन कंट्रोल में रहता है, आपकी सांसें भी आपके कंट्रोल में होते हैं, और आपकी सांसें भी आपके कंट्रोल में होते हैं। और प्राणायाम के साथ ही कंक्लूड करेंगे। ये डिपेंड करता है, जब आप आसन प्राणायाम को कंबाइन करके प्रैक्टिस करते हैं, आपका मन प्यूरिफाई होता है, आपकी नर्व सिस्टम जो है पूरे के पूरे, उसकी जो ब्लॉकेज है जो भी, वो क्लीन हो जाता है, आपकी मन कूल और काम होता है, तो आपकी गलत विचार, जो गलत तरीके के जो सोच है, विचार है, वो कम आते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप बुरे से बुरे आदमी ना, अगर वो शांत है किसी के भी कारण से, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, जो भी 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे के लिए अगर वो शांत है, खुश है, उससे गलत काम नहीं हो सकता। मन को शांत रखने, खुश रखने से गलत विचार वैसे ही काम आते हैं। प्राणायाम से जब मन बहुत ज्यादा कूल, काम और प्यूरिफाइड होता है, तो फिर मन शुद्ध होता है, और जब शुद्ध मन होता है तो आत्मा की ओर जॉइनिंग आसान होता है। दूसरी चीज, ये तो हो गया स्पिरिचुअल बेनिफिट। जो एक्सटर्नल बेनिफिट है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है आसन के द्वारा, तो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता है आसन प्राणायाम दोनों के द्वारा, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपकी नर्व सिस्टम का स्ट्रेंथ बढ़ता है, बॉडी में, माइंड में, विल पावर में एनर्जी बहुत आती है, इंटेलेक्ट को शार्पन करता है। इसीलिए बच्चों के लिए भी रिकमेंड किया जाता है प्राणायाम करें, पर वो रेगुलर करने की जरूरत है, विदाउट एनी ब्रेक करने की जरूरत है। और एट द एंड ऑफ द डे जब हम यम नियम आसन प्राणायाम करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार होते हैं, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे, वो है प्रत्याहार, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।